वचन।
उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में शामिल हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार।
मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि अय्यूब जो परमेश्वर का एक खरा व्यक्ति, एक भक्त जिसके जीवन में कठिनाइयां आई हैं और उसके तीन मित्र उससे वार्तालाप कर रहे हैं, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अय्यूब इससे भी सांत्वना को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो आगे हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं अय्यूब के पुस्तक से, उसके जीवन से, निश्चित रूप से आपका वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। हम इस बात को समझ सकें कि कठिनाई के समय में, दुख और बीमारी के समय में हम किस प्रकार से आपसे सीख सकते हैं। हमारे विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। आप उन सब की भी सुधि लीजिए, सहायता कीजिए। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम अय्यूब की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। अय्यूब अपने मित्रों को मरीचिका और छलावा कहता है। वे उसकी समस्या को समझ नहीं पा रहे थे, परंतु अपना ज्ञान झाड़ रहे थे और उसे पापी भी कह रहे थे। आइए हम पढ़ें अय्यूब 6 अध्याय उसके 24 से 26 पद में। अय्यूब 6 अध्याय 24 से 26 पद में लिखा है, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है? क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराश जन की बातें तो वायु की सी होती हैं। वह कहता है, तूने जो कहा वह अच्छा है, परंतु वह मेरी समस्या के संदर्भ में नहीं है। तुम मेरी समस्या को समझ नहीं पा रहे हो। जी हाँ, एक रोगी डॉक्टर के पास गया और निदान में उसे गठिया का रोग बताया गया, जबकि वह कैंसर था। और जब तक वह कैंसर के विशेषज्ञ के पास पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अय्यूब की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वह कहता है, तुम मेरी समस्या को समझने के लिए तो आए हो, परंतु तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम कहते हो कि मुझ में गुप्त पाप है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि तुम मेरी समस्या को सही समझ पाओ और तब तुम मेरी सहायता में कुछ कहोगे, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। स्मरण रखें कि उसके ये मित्र परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। वे अय्यूब को नहीं समझते थे। वे तो अपने आप को भी नहीं समझते थे। वे वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाए और तीनों ने एक ही निष्कर्ष निकाला कि अय्यूब ने पाप किया है और वह अपने पाप का अंगीकार नहीं कर रहा है, अतः परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। ऐसा ही हम में से कई लोग अपने मित्र या परिवार के किसी सदस्य को बीमार अवस्था में देखते हैं तो हम इस प्रकार के निष्कर्ष को निकालते हैं कि जरूर इसने कुछ पाप किया है, जैसा कि इन मित्रों ने अय्यूब के लिए कहा। अय्यूब 7 अध्याय उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई हैं। यहाँ पर अय्यूब को कष्टों और दुखों से राहत नहीं मिल रही थी, वह बहुत ही अधिक बीमार था। उसके मित्र उसकी दयनीय दशा पर ध्यान नहीं दे रहे थे और उन्होंने उसे सांत्वना नहीं दी। उसकी पत्नी ने भी उसे आत्महत्या करने का सुझाव दिया। जब उसका संसार धंस गया तब वह एक दयनीय निराश एवं हताश मनुष्य सा हो गया। अय्यूब 7:4-6 में लिखा है, जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ मैं कब उठूंगा, पर रात लंबी होती जाती है और पांव फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराश में बीते जाते हैं। अय्यूब जान गया था कि उसका रोग असाध्य है और उसका अंत भी निकट है। संभवतः उसे पहले भी वह रोग हुआ था। उसके मित्रों ने उसकी दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। वे आए तो उसकी सहायता के लिए, परंतु उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पाए। वे उसे समझ ही नहीं पाए थे। कहा जाता है कि मित्र वही है जो आपको जानता है और समझता है और आपसे फिर भी प्रेम करता है। अय्यूब के मित्र उसे नहीं जानते थे। अय्यूब कहता है कि उसकी रोगावस्था तो कम से कम सहानुभूति की योग्य है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अय्यूब 7:13-16 में लिखा हुआ है, जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है, यहाँ तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि बुखार के कारण उसे दौरे पड़ रहे थे और भयानक दर्शन उसे दिखाई दे रहे थे। अय्यूब 7:17-19 में लिखा हुआ है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल लूं। ध्यान दीजिए, उसकी एक ही अंतिम इच्छा थी कि वह शांति से मर जाए। वह चाहता था कि अब तो परमेश्वर उसे अकेला छोड़ दे। उसे अपनी परीक्षा की अनुभूति तो हो ही रही थी, परंतु उसके पीछे क्या है वह नहीं जानता था। उसकी प्रतिक्रिया सामान्य थी। लोग प्रायः यही कहते हैं, मुझे मेरे दुखों में अकेला छोड़ दो या मुझे मेरे हाल में जीने दो। अय्यूब 7:20-21 में लिखा हुआ है, हे मनुष्य पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूँ? तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा, पर मेरा पता नहीं मिलेगा। वे अय्यूब को पापी ठहरा रहे थे, जबकि अय्यूब निरापराध था और निरापराध होने का दावा भी नहीं कर पा रहा था। वह स्वीकार कर रहा था कि उसने पाप किया था, परंतु उसे पाप के दंड के लिए क्यों चुना गया है? उसका जीवन क्यों एक महापापी का बोझ बने? परमेश्वर उस पर दया क्यों नहीं कर रहा था? परमेश्वर उसके पाप क्षमा करके उसे उबार क्यों नहीं रहा था? मेरे मित्रों, हम यहाँ पर अय्यूब के निष्ठा में कमी आते हुए देख रहे हैं। वह शैतान का आसान निशाना बन रहा था। आज जीवन से अकेले संघर्ष करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। वह बोतल पकड़ने या पाप में गिरने की स्थिति में था। शैतान उस पर वार करना चाहता था। अय्यूब का यह हाल था। क्या अय्यूब इन सब दबावों से दूर हट पाएगा या टूट जाएगा? आइए हम देखते हैं 8 में। विषय है विलदत का पहला वाद। 8 में विलदत का पहला वाद हम देखेंगे। अय्यूब पर वार करने वाला दूसरा मित्र विलदत है। वह रूढ़िवादी विलदत अतीत में ही जीता है। उसका तर्क है 8:8 में, पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भूगर्भ विज्ञान के पत्थरों को देखकर अतीत और भविष्य की घटनाएं सुना रहा है। विकासवाद को मानने वाला भी एक प्रकार से रूढ़िवादी ही है, परंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। विकासवाद का समर्थक अतीत में ही खोया रहता है और कल्पना करता है, जिसे वह सिद्ध नहीं कर पाता है। इस जगत की उत्पत्ति के दो ही विचार हैं, सृजन और कल्पना। विकासवाद भी कल्पना ही है। इसमें आप खोदकर एक हड्डी निकालते हैं और उसकी तिथि एवं समय का पता लगाकर उसे किसी प्राचीन युग का बताते हैं तथा उसे मनुष्य के विकास से जोड़ देते हैं, परंतु कौन जानता है। अय्यूब की यह पुस्तक इसी प्रश्न को उठाती है। अय्यूब 38 उसके 4 में परमेश्वर अय्यूब से पूछता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। विलदत बात बात में यही तर्क काम में लेगा, जब मैं युवा था, और हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। वह अनेक लोकोक्तियां, नीति वचन और धार्मिक शब्दावलियां जानता है, परंतु उसकी बातों में भी नया कुछ भी नहीं है। वह एलिपज से अधिक अभद्र व्यवहार रखता है। वह अय्यूब को खरी खोटी सुनाकर उसका दिल और अधिक तोड़ता है। वह भी अय्यूब के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुआ। विलदत उसका मित्र माना जाता था। तो आइए देखें, विलदत का वाद प्रथागत है। अय्यूब 8:1-2 में वह कहता है, तब शूही विलदत ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेंगी। मित्रों, उनका विवाद हाजिर जवाबी है। एक डांट फटकार का समय है। प्रसंगवश वे बुद्धिमान मनुष्य थे। ध्यान दें, विलदत चाकू की नाई वार करता है और चाकू घुमा भी देता है। वह कहता है, अय्यूब तेरी बातें सुनना हवा की आवाज सुनने जैसा है। तू केवल हवा की सी बातें करता है। मैं तो कहूंगा कि वे सब अय्यूब भी बातूनी है। अतः विलदत की यह बात अय्यूब के उपहास में हास्यपद है। अब तक वहां भीड़ जमा हो गई है, जैसे किसी खेल का आनंद लेने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। वे बौद्धिक वाद विवाद सुनना चाहते थे, जैसे प्रतियोगिता हो रही हो। आज शारीरिक बातों की प्रतियोगिता देखी जाती है, और मैं सोचता हूं कि अधिक सभ्य कौन है जो इस प्रकार के खेलों को देखता है। अय्यूब 8:3 में लिखा है, क्या परमेश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है। वह वास्तव में यह कह रहा है, अय्यूब तुझे वही मिल रहा है जो तेरे लिए है। तू अपना बचाव कर रहा है, परंतु इसका अर्थ तो यह है कि तेरे जीवन में बड़ा पाप है जिसका तुझे उचित फल मिल रहा है। तब अय्यूब 8:4 में लिखा हुआ है, यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। यह बहुत ही बुरी बात है। वह कहता है कि उसकी संतान मर गई क्योंकि वे पापी थे। इससे अधिक दुख देने वाली बात के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई कहे कि तुम्हारे बच्चों के पाप के कारण वे मर गए। विलदत को ऐसा कहने का अधिकार नहीं था। हम जानते हैं कि उसकी संतान के विनाश का कारण यह नहीं था। परमेश्वर ने आरंभ ही में हमें यह स्पष्ट कर दिया है कि यह शैतान को अनुमति के द्वारा ही ये सब घटनाएं घट रही हैं। हम पढ़ते हैं अय्यूब 8:5-6 में, तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। अय्यूब, जैसा तू कहता है, यदि तू हिम की नाई सफेद होता तो परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे चंगा करता और तेरा पुनरुद्धार करता, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि कुछ तो गंभीर समस्या तेरे साथ है। यह विलदत का तर्क है। अय्यूब 8:7 में लिखा हुआ है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। ध्यान दे, अंत में होगा भी यही। जब नाटक समाप्त हो जाएगा तब वह विपुल आशीषें पाएगा। परमेश्वर उसे सब कुछ दो गुना लौटाएगा। अय्यूब 8:8 में लिखा है, पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे। विलदत विकासवाद की बात करता है। वह कहता है कि प्रत्येक घटना के स्थिर नियम हैं। वह पुरानी लोकोक्तियां द्वारा ऐसे अनेक नियमों का संदर्भ भी देगा। अय्यूब 8:9 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते। यह एक सच बात है। विलदत वास्तव में यह नहीं दर्शाता है कि वह नहीं जानता, परंतु यह कि अय्यूब कुछ नहीं जानता है। तथापि यह पद विलदत के संदर्भ में ही सच है। यह विकासवादियों के लिए वरन आपके और मेरे लिए भी सच है। हम कल ही के तो हैं, परंतु मनुष्य जगत में पुराना नहीं है। परमेश्वर ने यह उचित नहीं समझा कि हमें बताए कि मनुष्य की सृष्टि से पूर्व हजारों वर्ष में वह क्या कर रहा था। स्पष्ट कहूंगा कि मैं अतीत के सहस्त्रों वर्षों में रुचि नहीं रखता, परंतु आने वाले सहस्त्रों वर्षों में रखता हूं कि परमेश्वर क्या करेगा, क्योंकि मैं उस समय रहूंगा। अय्यूब 8:10 में लिखा है, क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें न कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात न निकालेंगे? विलदत कहता है कि बीती बातों से हमें समझ प्राप्त होगी। मनुष्य कुछ पत्थरों और हड्डियों को लेकर सोचते हैं कि वे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में सब कुछ जानते हैं या जान गए हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि मनुष्य अपने ज्ञान से अधिक की कल्पना करता है? प्रेरित पौलुस का दर्शन शास्त्र कितनी भिन्न थी। वह प्रभु यीशु और भविष्य की चर्चा करता है। फिलिपियों के पत्री 3:14 में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अनंत समय की भावी घटनाओं को हम केवल परमेश्वर के वचन द्वारा ही जान सकते हैं। विलदत अब और अधिक मुंहफट और अभद्र होता जाता है। अय्यूब 8:11-12 में हम पढ़ते हैं, क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो और काटी भी न गई हो तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। वह विज्ञान का प्रकाशन करता है, परंतु तीसरी कक्षा का बच्चा भी इसका उत्तर जानता है। क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? यह तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। सभी इस बात को जानते हैं। अय्यूब 8:13 में लिखा है, परमेश्वर के सब विसारने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। वह अय्यूब को ढोंगी कहता है। वह कहता है कि अय्यूब कुछ छिपा रहा है। वह यह भी कहता है कि अय्यूब तू ढोंगी है, तू कुछ छिपा रहा है। तब हम आगे पढ़ते हैं अय्यूब 8:14-15 में, उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे परंतु वह न ठहरेगा। वह उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु वह स्थिर न रहेगा। मेरे प्रियो, यह तो ऐसा है कि विपत्ति के समय मकड़ी के जाले पर निर्भर करें, वह आपको थाम नहीं पाएगा। अय्यूब 8:20 में लिखा हुआ है, देख, परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और न बुराई करने वालों को संभालता है। क्या यह सच है? परमेश्वर ने निश्चय ही मेरी सहायता की है जबकि मैं दुराचारी था। मित्रों, उसने मेरा उद्धार किया है। क्या परमेश्वर एक खरे मनुष्य को त्याग देगा? जी नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। अब प्रश्न यह है कि खरा मनुष्य कौन है? कोई नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो के पत्री 3:10 में हम पढ़ते हैं, यद्यपि बिलदत की बात सच है, वह जीवन में अग्नि परीक्षा तक सच नहीं है। अय्यूब 8:21-22 में लिखा है, वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा, तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा। वह कहता है कि अय्यूब के सर्वनाश का कारण है कि वह एक पापी है। अय्यूब के जैसे व्यक्ति और उसके पद के मनुष्य के लिए यह अच्छा व्यवहार नहीं है। विलदत न तो परमेश्वर को और न अय्यूब को और न स्वयं को जानता था। वह रूढ़िवादी है। वह सोचता है कि विज्ञान के आधार पर वह जगत की उत्पत्ति समझ पाएगा। वह बुद्धिमान तो है परंतु अज्ञानी है। वह परमेश्वर का स्थान कभी भी नहीं ले सकता। मेरे मित्रों, अग्रिम अध्यायों में अय्यूब का प्रतिवाद अति उत्तम है, जबकि वह वाद विवाद से उब गया है। जी हाँ, जब हम अगले अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि अय्यूब का प्रतिवाद बहुत ही रुचिकर है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे, तब तक आप सब अय्यूब के पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया है, अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा पिया है अपनी जिंदगी, अब दी खुशी रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली। खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला। यीशु का लहू मुझे छू।